नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की स्थिति नामीबिया के खिलाफ मजबूत, इटली और श्रीलंका ने एक तरफा जीत दर्ज की। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एड्रियन कर्माकर ने जीते स्वर्ण पदक। FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से जारी और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण 23 फरवरी से गुलमर्ग में। सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर भारत का मुकाबला नामीबिया से जारी है। दिल्ली में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नामीबिया के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बना लिए हैं। इससे पहले नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ईशान किशन ने 24 गेंद पर ताबड़तोड़ 61 रन की पारी खेली। जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसा ही प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों का।
जी बिल्कुल, ये माना जा रहा था और ये दिल्ली में भारतीय टीम का एकमात्र मैच है, तो काफी संख्या में दर्शक भी पहुंचे हुए हैं और उनका पूरा मनोरंजन किया है भारतीय टीम ने अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है।
जी, और अभी भी पता चला है कि हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक लगा दिया। शिवम दुबे 23 रन पर खेल रहे, तो एक तरह से उनके लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह देखें इसको।
जी, सभी की नजरें जो बड़ा मुकाबला है 15 फरवरी को होने वाला है कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर टिकी हुई है और इसे एक अभ्यास मैच ही माना जा रहा है। लेकिन ये वर्ल्ड कप है और हमने देखा है कि ये T20 प्रारूप में अपसेट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो किसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए भारतीय टीम ने पूरी संजीदगी से ये बल्लेबाजी की है। यहाँ
जैसा सभी को पता है कि अभिषेक शर्मा को स्टमक प्रॉब्लम के कारण ये मुकाबला खेल नहीं सके, तो बड़ा मौका संजू सैमसन के लिए भी था। हालांकि उन्हें स्टार्ट मिला लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए।
लेकिन आप देखिए, 8 गेंद में 22 रन बनाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं जबरदस्त, तो T20 में 22 24 25 रन की जो पारियां होती है वो उनको भी आप कमतर, क्योंकि जो प्रारंभिक बल्लेबाज होता है उसका मूल काम होता है टेम्पो सेट करना। 7वें ओवर में भारत के 100 रन बन गए थे, जितनी जबरदस्त इस टूर्नामेंट में शायद सबसे तेज 100 रन भारत ने बनाए हैं, तो बहुत अच्छी एक शुरुआत दी। हाँ, शुरुआत स्टार्ट जो मिला था उनको एक बड़ी पारी यहाँ खेलनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि उन्होंने अपना काम बखूबी यहाँ निभाया है।
और ईशान किशन की बात करें तो लगातार उन्हें मौके मिल रहे हैं और उसको वो भुना भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से।
देखिए, कमबैक हो तो ऐसा हो कि ईशान किशन, और ये कमबैक उनका IPL से नहीं हुआ, ये कमबैक उनका डोमेस्टिक क्रिकेट से हुआ है। जिस तरह विजय हजारे ट्रॉफी में वो खेले थे, उस लय को उन्होंने बरकरार रखते हुए, और अभी जो ईशान किशन 0.2 हम देख रहे हैं, काफी काम होके कंपोज्ड होकर और एक एंकर की भूमिका निभाने की दृष्टि से वो खेलते हैं। गैर जिम्मेदाराना शॉट उनकी पारी में बहुत कम होते हैं, बेदाग पारियां होती है उनकी, और आज भी कुछ शॉट्स उनके जो थे वो बहुत ही दर्शनीय थे। अर्धशतक बनाया उन्होंने, काफी बड़ी उन पर आज जिम्मेदारी थी, क्योंकि जैसे आपने बताया अभिषेक शर्मा नहीं है और पेट के संक्रमण के कारण, हालांकि अस्पताल से उनको छुट्टी तो मिल गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच को देखते हुए टीम प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर कोई जोखिम नहीं लिया, और जो कि सही भी है, और यहाँ एक अच्छा स्कोर भारत को मिल ही गया है।
नामीबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नामीबिया हो गई या अफगानिस्तान हो गए, अफगानिस्तान तो खैर कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बड़ी टीम है, तो जब इनको ऐसा मौका मिलता है विश्व पटल पर आकर खेलने का तो कितना दबाव उन पर रहता होगा, क्योंकि बड़े टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है, हारने के लिए उनके पास कुछ नहीं लेकिन जीतने के लिए सब कुछ।
देखिए, मैं नामीबिया के कोच और कप्तान दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर चुकी हूं, और दोनों का यही कहना था कि खोने के लिए वाकई उनके पास कुछ नहीं है, और भारत जैसी टीमों से खेलने के मौके उनको कम मिलते हैं, तो ये सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए नहीं जो यहाँ टीम लेकर आए हैं, बल्कि उनके देश में, और आपको पता होगा कि 2027 विश्व कप का सह मेजबान भी है दक्षिण अफ्रीका में जो होने वाला है, तो उनके देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, विश्व कप में खेल रहे हैं, भारत में खेल रहे हैं। और आप गेराल्ड इरास्मस जो उनके कप्तान है, आज देखिए उनका बॉलिंग एनालिसिस क्या जबरदस्त उन्होंने, और वो भी उस समय जब भारतीय बल्लेबाज, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, फुल फायर पे थे उस समय, उन्होंने 5 से नीचे की इकोनॉमी से शुरू के 3 ओवर में रन दिए हैं, तो इससे जरूर उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा।
और 3 विकेट भी अपने नाम किए उन्होंने। और इससे पहले आज खेले गए मुकाबलों में इटली ने नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। नेपाल के 124 रन के लक्ष्य को इटली ने बिना कोई विकेट खोए 13वें ओवर में ही हासिल कर दिया। जिस प्रकार का प्रदर्शन नेपाल का इंग्लैंड के खिलाफ था, उम्मीद की जा रही थी कि वो इस मुकाबले में फेवरेट्स होंगे, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन इटली का।
बिल्कुल, एक ऐसा देश जिसको आज तक आप फुटबॉल के लिए ही जानते हैं, अजूरी जिनको कहा जाता है, और फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ी इटली से निकले हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुकी है इटली। क्रिकेट में अभी जिसको कहते हैं ना शैशवावस्था, बहुत शुरुआती कदम है, और ये मुझे लगता है उनके क्रिकेट इतिहास, जितने समय से भी वो खेल रहे, सबसे स्वर्णिम पल है। शीतकालीन ओलंपिक इटली में चल रहे हैं, और आज जब मैच जीता उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कोच ने यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इसको फ्रंट पेज पे जगह मिलेगी और ओलंपिक बैक पेज पे जाएगा। तो सारे इटली के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, हालांकि कई भारतीय खिलाड़ी भी इटली में टीम में है, आर्यन दत्त उनमें से एक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि एक मकसद भी यही है जो ज्यादा टीमों को शामिल किया गया इस विश्व कप में, 20 टीमें खेल रही है, कि क्रिकेट का जो अनछुए वो है क्षेत्र है, जहां तक यूरोपियन टेरिटरी है, जैसे जहां तक उनका प्रचार नहीं हुआ है, उन टीमों को यहां विश्व पटल पर खेलने का मौका दिया जाए। और इस तरह की जीत मिलने के बाद जब आप वर्ल्ड कप में जीतते हैं तो उस खेल का प्रचार देश में जरूर होता है, तो उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार इटालियन टीम आएगी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में तो और मजबूती के साथ आएगी।
जी बिल्कुल, आपकी बात से मुझे वो अमेरिका वाला मैच याद आता है, पिछले साल अमेरिका ने भी पाकिस्तान को हराया था।
पिछले साल की बात करें, इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 6 विकेट ले लिए थे अमेरिका में, और अगर सूर्य कुमार यादव ने वो शानदार पारी नहीं खेली होती तो पहले ही मैच में उलटफेर हो सकता था। और आप सिर्फ वही नहीं, आप नीदरलैंड को देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया, या नेपाल की हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड को एक झटका दे ही दिया था ऑलमोस्ट। तो ये मैंने जैसे पहले कहा T20 प्रारूप है, एक 4 ओवर या एक बल्लेबाजी का अच्छा सेशन जो होता है वो काफी बदलाव ला सकता है।
जी बिल्कुल, इस ये दर्शाता है अब तक जितना भी प्रतियोगिता हुआ है कि कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं है, ऑन ए डे कोई भी टीम किसी को भी पराजित कर सकती है। वहीं श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हराया। श्रीलंका के 226 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम 120 रन पर ही सिमट गई। मेजबानी कर रही श्रीलंका और वो जानती है कि जो होम कंडीशंस है वहां पे स्पिनरों को फायदा, और बल्लेबाज भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पिच पर खुद ही।
और वो भी आप देखिए कि वानिंदु हसरंगा जो इतना बड़ा नाम है वो नहीं है, वो पहले मैच में चोट के बाद बाहर हो गए थे। उसके बाद एक बड़ा आपका प्रमुख खिलाड़ी अगर बाहर हो जाता है, टीम कंपोजिशन जो होता है उस पर असर पड़ता है, टीम के संतुलन पर असर पड़ता है। लेकिन ये भी एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा बेमेल मुकाबला था। ओमान ने हालांकि काफी प्रयास किया, लेकिन श्रीलंका की टीम ने जिस तरह एज अ टीम प्रदर्शन किया, चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी की बात करें, तो जरूर पिछले कुछ अरसों में जो एक ट्रांजिशन फेस आया था श्रीलंका क्रिकेट में, उससे वो अभी तक बाहर निकल नहीं पाए। जब बड़े बड़े कई खिलाड़ी महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, मुथैया मुरलीधरन, एक के बाद एक जब संन्यास ले लिया उन्होंने, तो उसके बाद जो एक श्रीलंका की टीम मजबूत मानी जाती थी, यहां पर श्रीलंका के पास विश्व कप एक ऐसा मंच है, सह मेजबान भी है, कि यहां से वो उसी फॉर्म में वापसी कर सकती है।
चर्चा करते हैं निशानेबाजी पर। नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज एशियाई चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में टीम के साथी नीरज कुमार को पछाड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड से स्वर्ण पदक जीता और भारत ने स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया। 25 वर्षीय निशानेबाज ने 362 के विश्व रिकॉर्ड से नीरज को महज 0.2 अंक से पीछे छोड़ा। ऐश्वर्य ने 10.7 के अंतिम शॉट से जीत हासिल की। नीरज ने 361.8 अंक से रजत, जबकि अखिल श्योरान ने 43.5 अंक से कांस्य पदक जीता। क्वालिफिकेशन में नीरज 593 के स्कोर से शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंचे, जबकि ऐश्वर्य 588 अंक से दूसरे और श्योरान इतने ही अंक से तीसरे स्थान पर रहे। नीरज, ऐश्वर्य और श्योरान की तिकड़ी ने 1769 अंक से टीम स्वर्ण पदक जीता। जापान 1754 अंक के साथ दूसरे और कजाकिस्तान 1748 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जूनियर पुरुष फाइनल में एड्रियन कर्माकर ने 2.2 अंक से चैंपियनशिप का दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। कजाकिस्तान के दिमित्री किम दूसरे, वहीं भारत के मानवेंद्र सिंह शेखावत तीसरे स्थान पर रहे। फाइनल में पहुंचे तीसरे भारतीय हेमंत बर्मन शूट ऑफ में पिछड़कर पांचवें स्थान पर रहे। यह प्रतियोगिता शनिवार तक खेली जाएगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
आने वाले इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए ये जो प्रतियोगिता है काफी अहम हो जाती है।
बिल्कुल अहम हो जाती है और प्रदर्शन भी बहुत जबरदस्त रहा है। आज आप देखिए कि ऐश्वर्या प्रताप तोमर ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता ही, लेकिन तीनों पदक भारत को मिले हैं। क्लीन स्वीप भारत ने किया है, नीरज सिंह दूसरे स्थान पर और दोनों के बीच में 0.2 अंक का ही अंतर था। अखिल शोरण काफी अनुभवी निशानेबाज है, वो तीसरे स्थान पर रहे, तो भारत के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि अभी सारी तैयारी जो है वो अगले जो 2-3 महत्वपूर्ण इवेंट आने वाले हैं उनके लिए हो रही है, तो ये एक अच्छा संकेत।
FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से जारी है। ये मैच ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना ने 7-0 की बढ़त बना ली है। निराशाजनक प्रदर्शन जारी है भारत का इस प्रतियोगिता।
बिल्कुल, पहले मैच में तो फिर भी थोड़ा लग रहा था 3-1 से हारे थे, थोड़ा एक गोल किया था अभी तक, लेकिन यहाँ बिल्कुल एक भी गोल नहीं कर पाई है टीम। और अर्जेंटीना हालांकि रियो ओलंपिक चैंपियन है, लेकिन पिछले कुछ अर्सों में भारत ने बैक टू बैक ओलंपिक पदक जीते हैं और काफी अच्छी टीम है। और ये जो सारी तैयारियां हैं, ये एशियन गेम्स है इस साल, वर्ल्ड कप है इस साल, और उसके अलावा लॉस एंजलिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है।
और इससे पहले कल हुए लीग मुकाबले में भारत को बेल्जियम से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। बेल्जियम के लिए नेल्सन ओनाना, थॉमस क्रोल्स और ऑर्नी वेन डेसेल ने गोल किए, जबकि भारत की ओर से एकमात्र गोल शीलानंद लकरा ने किया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की घोषणा की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के हर सत्र में रोमांचक प्रदर्शन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों ने बर्फ और हिम खेलों दोनों के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मंच बनाकर देश के शीतकालीन खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मौलिक रूप से बदल दिया है। कितना अहम हो जाता है इस तरह का आयोजन।
देखिए, एक तरफ मैंने जैसे पहले बताया शीतकालीन ओलंपिक चल रहे हैं और उसके ठीक बाद ये गुलमर्ग में आयोजन होने वाला है, और ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसमें भारत का अभी तक बहुत ज्यादा दखल रहा नहीं है, लेकिन अभी पहला चरण जनवरी में जो लद्दाख में लेह में हुआ था काफी सक्सेसफुल रहे थे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था उसको, और उसके बाद अभी यहाँ 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और तमिलनाडु महाराष्ट्र जैसी टीमें जो आप सोच भी नहीं सकते कि हिम खेलों में बर्फ के खेलों में ऐसी टीमों का दबदबा होगा, तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी वहां से निकले हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि गुलमर्ग में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि पिछली बार भारतीय सेना ने सर्वाधिक 18 पदक जीते थे, जबकि हिमाचल प्रदेश दूसरे, लद्दाख, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे थे। चीन में होने वाले AFC अंडर 17 महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया और लेबनान के साथ ग्रुप बी में रखा गया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद वे जापान और लेबनान का सामना करेगी। ये टूर्नामेंट 1 से 17 मई तक चीन के सुजों शहर में आयोजित किया जाएगा। कितना अहम होगा ये टूर्नामेंट भारत के लिए?
देखिए, क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है कि भारतीय टीम ने इसके लिए क्वालिफाई किया, और यहाँ बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना होगा, तो भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा।
जी बिल्कुल, 21 साल बाद क्वालिफाई किया है उन्होंने। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि भारत ने नामीबिया को 210 रन का लक्ष्य दिया है। कितना आसान होगा भारत के लिए?
हाँ जी, 200 से ऊपर का लक्ष्य, और भारत का गेंदबाजी आक्रमण आप जानते ही हैं कैसा है, लेकिन यहाँ नामीबिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक समय लग रहा था 250 से ऊपर रन बन जाएंगे, भारत को कम स्कोर पे रोका है।
जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मुन्ना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।